हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के आठवें अध्याय का तीसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। आसीनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम विवित्सवस्तत्वम अतः परस्य कुमार मुखया मुनयोन्व पृच्छन्। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है, इसका अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा है। शिल प्रभुपाद की जय। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। तात्पर्य यह इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के विषय में कहा। यहाँ पर यह बताया गया है कि कब और किससे भागवत कही गई। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान संकर्षण ने उनके उत्तर दिए थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासिनी पौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। आजानुलंबित भुजो कनकावधातु संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पन्दो चित्रोच्छन्दो तमोनितो। हरे कृष्ण। सो प्रसंग चल रहा है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले हरिद्वार में और वहाँ पर विदुर जी ने उस अवसर का लाभ उठाया और मैत्रेय मुनि से उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। आवाज़ आ रही है सबको? सो पहले भी काफ़ी प्रश्न पूछ चुके हैं विदुर जी और मैत्रेय मुनि ने उनको उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हम देखते हैं कि तीसरे स्कंद के सातवें अध्याय में विदुर जी ने और भी अनेक प्रश्न पूछे कि सकाम कर्म क्या है, लोगों का जो वृत्तिपरक व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ क्या हैं लोगों की, प्रलय कैसे होती है, ब्रह्मांड में 14 लोग किस प्रकार स्थित हैं, किस प्रकार लोग सुख के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उनको उसका विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा क्यों है। सो इस प्रकार के उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं जिससे क्या हो कि विदुर जी ने ये प्रश्न पूछे कि जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, हाँ, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, हाँ, उनके लाभार्थ, उनके फायदे के लिए विदुर जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं वो समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। सो ये उद्देश्य होता है जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं और वरिष्ठ भक्तों से वो तरह तरह की जिज्ञासाएं करते हैं, तो उन जिज्ञासाओं का जो उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता कि मैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। उनका उद्देश्य होता है कि उनके अपने भौतिक कष्टों का निवारण हो और दूसरे लोग जो उसको सुन रहे हैं, हाँ, उनके भी भौतिक कष्ट जो हैं नष्ट हो जाए। इसीलिए कहा गया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। भागवत का जो है नित्य सेवन अर्थात नित्य अध्ययन करने से श्रद्धा पूर्वक जितने भी अभद्र हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी अनर्थ हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, जब हमारे जितने भी अज्ञान रूपी कुधारणाएं हैं जब वो नष्ट हो जाएंगी, तो हमारी भगवान के नाम में स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाएगी, है ना। अभी और ये जो अनर्थ है ये पीलिया के रोग की तरह है, जॉन्डिस की तरह है, कि इतना भगवान का मधुर नाम है, इतना मीठा है, इतनी मिठास है भगवान के नाम में, लेकिन हमारी रुचि इसमें नहीं आ रही है। रुचि क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोग अनेक प्रकार के अनर्थों से पीड़ित हैं। तो जब हम बार बार भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब हम वरिष्ठ भक्तों का संग करेंगे, जिनकी अपने गुरु में, जिनके प्रभुपाद में और जिनके भगवान कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में जिनकी निष्ठा है, दृढ़ निष्ठा है, जो ऐसे कोई वचन नहीं बोलेंगे जो गुरु और कृष्ण की शिक्षाओं से हट कर हो, तो वो ऐसे लोगों का संग करने से हमारे भौतिक क्लेश भी खत्म हो जाएंगे और हमारी भगवान के नाम में रुचि आएगी। सो यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है कि विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि से मिले तो वो लोगों की क्या स्थिति है, कैसे ब्रह्मांड चल रहा है, कैसे विभिन्न प्रकार के देवी देवता मनुष्य इत्यादि पैदा हो रहे हैं, हाँ, लोग किस प्रकार अपने वृत्तिपरक कार्य में लगे हुए हैं। ये जो प्रश्न है ये देखने में लगता है कि भक्ति से कोई संबंध नहीं है, नहीं, लोग सकाम कर्मों में कैसे लगे हैं उसका भक्ति से क्या संबंध है, 14 लोग कैसे बने उसका क्या संबंध है, लेकिन वास्तव में संबंध है। हाँ, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं मयाध्यक्ष प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत भी परिवर्तते, कि हे अर्जुन, जो पूरा भौतिक संसार है, भौतिक प्रकृति है, मयाध्यक्ष मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, मैं ही इसको संचालित कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह संचालित कर रहे हैं, हाँ, ये जानने के लिए जो भक्त हैं, विदुर जी जैसे जो भक्त हैं, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जब आगे के श्लोकों में आप देखेंगे मैत्रेय जी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे कि मैत्रेय जी ये विस्तार से समझा रहे हैं कि किस प्रकार जो पूरा जगत है वो भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, किस प्रकार सृष्टि बन रही है और नष्ट हो रही है। अब भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं भूतवा भूतवा कर लिए थे, बार बार बन रही है सृष्टि, हाँ, और बार बार नष्ट हो गया, भूत ग्रामम एवायम भूतवा भूतवा कर लिए थे, है ना, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं। तो कैसे हो रही है, कैसे सृष्टि बन रही है, कैसे सृष्टि नष्ट हो रही है, संहार हो रहा है सृष्टि का, ये जानने के लिए विदुर जी ने ये प्रश्न पूछे हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे हम कहा कि ये प्रश्न सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए पूछ लिए, इसके पीछे कारण है कि हम ये जाने कि किस प्रकार भगवान का सक्रिय हाथ है ये प्रकृति को चलाने में, किस प्रकार भगवान ये प्रकृति का संचालन कर रहे हैं, ये जानने से हमारी भगवान में श्रद्धा और अधिक प्रगाढ़ होगी। हम ये समझ पाएंगे कि चाहे दिखे और चाहे ना दिखे, हाँ, भगवान का सक्रिय योगदान, भगवान का हाथ, भगवान का निरीक्षण, भगवान का संरक्षण एक एक गतिविधि में मौजूद है। हरेक प्राणी, हरेक जीव, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि शिव देवी देवता भी जो हैं और भगवान के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों से ये श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ होती है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कम महत्वपूर्ण करके नहीं आंकना चाहिए और अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारे भगवान में श्रद्धा प्रगाढ़ होगी। सो ये एक पक्ष है जो इस प्रसंग में, इस श्लोक में निकल के आ रहा है। दूसरा प्रसंग जो है कि जब विदुर जी ने इतने प्रश्न पूछे मैत्री जी से, तो मैत्री जी बहुत खुश हुए, हाँ, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने विदुर जी का बहुत आभार प्रकट किया कि आप पूर्व वंश में आपका जन्म हुआ है, तो आपने आपका पूर्व वंश में जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आप पूर्व वंश का उद्धार करना चाहते हैं। जब कोई महान व्यक्ति किसी वंश में प्रकट होता है, उसका जन्म होता है, तो पूरा कुल उस महान व्यक्ति के उस कुल में जन्म लेने के कारण उसका उद्धार हो जाता है। सो पुरुरवा नामक जो है एक राजा थे जिन्होंने उर्वशी से विवाह किया था, है ना, तो जो पुरु वंश में, क्योंकि इनका जन्म हुआ बाद में, कौरव और पांडव बने, और कौरव और पांडव किसमें बनाए, धृतराष्ट्र ने बनाए। जब धृतराष्ट्र ने भगवद गीता का पहला श्लोक बोला माम का पांडवाश्चर्य, वहाँ पर उसने विभाजन कर दिया कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, है ना, तो वहाँ पर उसके जो मन में था वो प्रकट हो गया और उसने बोला कि देखो वो पांडव के पुत्र अलग है और मेरे पुत्र अलग है, माम का मेरे पुत्र, मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चों का हित होगा या नहीं होगा इस महाभारत के युद्ध से। तो ऐसे वंश में जहाँ की पुरुरवा जैसे महान राजा का जन्म हुआ था, उस वंश में जन्म लेकर विदुर जी ने पुरु वंश को और ज़्यादा यशस्वी बनाया। तो जब अर्जुन जो है वो इंद्र के पास घूमने गए थे, इंद्र पिता हैं अर्जुन के, है ना, सो इंद्र के घर गए एक बार अर्जुन, तो वहाँ पर इंद्र ने उर्वशी को अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए भेजा, सो अर्जुन ने उर्वशी की ओर देखा भी नहीं और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला कि आप मेरी माता की तरह हैं। क्यों? क्योंकि आप जो हैं, आपने हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वा, आपने उनको, उनकी सेवा की है, उनको संतुष्ट किया आपने, तो मैं आपको अपनी माँ के समान मानता हूँ। तो अप्सरा ने, उरुशी ने कहा, देखो अप्सराओं के साथ ऐसा रूल नहीं चलता। अप्सराएं जो हैं वो एक वंश से कई पीढ़ियों के साथ वो सुख का अनुभव कर सकती है। मैंने पहले भी बहुत बार किया है, तो वो आप संकोच मत करो। हाँ, मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हूँ, और मैं स्वेच्छा से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है मुझे संतुष्ट करना। लेकिन अर्जुन जो है, उनको अपनी माता कुंती और माद्री के समान स्तर पर रख रहे थे। हाँ, सो बहुत क्रोधित होकर, हाँ बहुत ही क्रोधित होकर उर्वशी ने श्राप दे दिया कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक बन जाओ। तो अर्जुन ने स्वीकार किया। हाँ, जो वो अपने माँ बाप से, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे कभी डांट फटकार मिल भी जाए तो नाराज नहीं होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। सो अर्जुन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो मेरी माता समान उर्वशी ने मुझे श्राप दिया है, और इंद्र ने उर्वशी को मेरे पास भेजा ही क्यों, जबकि इंद्र को अच्छी तरह से जानकारी है कि मैं कभी भी जो है उर्वशी को अपनी माता के अतिरिक्त और किसी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तो वो अर्जुन जब इंद्र से मिले तो उन्होंने पूछा कि इसके पीछे आपकी क्या योजना है। तब इंद्र ने बताया कि देखो, जब तुम अज्ञातवास में रहोगे तो उस समय तुम्हें ये जो श्राप है ये वरदान के रूप में कार्य करेगा, और तुम एक नपुंसक के रूप में 1 साल तक अज्ञातवास में रह पाओगे, और स्त्रियों के बीच में छुप के रहकर तुम वो 1 वर्ष का समय निकाल पाओगे। तो ये श्राप वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान का ही कारण बनेगा। सो कई बार हम देखते हैं कि वरिष्ठ भक्त या गुरु कई बार डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारे लाभ के लिए है, और अगर हम उसको श्रद्धा से स्वीकार करेंगे और बहुत खुश होंगे कि देखो हमारे गुरु ने या वरिष्ठ वैष्णव ने हमें डांटा। हाँ, तो ऐसे ही एक प्रसंग मिलता है। एक बार सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जब जगन्नाथ पुरी आए, तो रास्ते में दूषित पानी पीने के कारण उनके सारे शरीर में जो है पस पड़ गई थी, जख्म हो गए थे उनके सारे शरीर में, और उससे मवाद पस बह रही थी उससे। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते थे और उनका आलिंगन करते थे, सो उनके जो शरीर की सारी पस है वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पे लग जाती थी। सो सनातन गोस्वामी उनको कहते थे कि महाप्रभु, आपका शरीर गंदा हो रहा है, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब माँ बच्चे को गोद में लेके बैठती है और बच्चा अपनी माँ की गोद में मल मूत्र करता है, तो माँ को घृणा नहीं होती, माँ को अच्छा लगता है, क्योंकि ममता होती है माँ की बच्चे में। तो इसी प्रकार जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूँ, तुम्हारा ये जो मवाद, जो पस है मेरे शरीर पर लगती है, तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। फिर भी सनातन गोस्वामी खुश नहीं थे इस बात से। वो कहते थे कि मैं महाप्रभु की सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि मैं उनके लिए कष्ट का कारण बन रहा हूँ। तो उन्होंने जगदानंद पंडित से इस बारे में चर्चा की। जगदानंद पंडित जो है वो सत्यभामा के अवतार हैं। तो जगदानंद पंडित से उन्होंने बोला कि देखो, मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की जगह उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए वृंदावन। तो जगदानंद पंडित ने कहा, हाँ तुम फौरन कल चले जाना वापस यहाँ से। हाँ, तुमने सही सोचा, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है तुम्हें। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, मैं वापस वृंदावन जाना चाहता हूँ, और मैंने जगदानंद से भी इस बारे में चर्चा की है और उनकी भी यही राय है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए वृंदावन, तुम चैतन्य महाप्रभु को परेशान कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए, एकदम गुस्से में आ गए, बोले बोले वो जग्गे की ये इतने मजाक, पूरा नाम भी नहीं ले पा रहे थे, इतने गुस्से में आ गए थे। कह रहे ये जग्गे कैसी क्या मजाक हो गई कि तुम जैसे वरिष्ठ भक्त को सलाह देने चले, कल का छोकरा उसको क्या पता है इस बारे में, तुम कहीं मत जाओ यहीं रहो। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का कि महाप्रभु आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, हाँ लेकिन असली कृपा तो आप जगदानंद पंडित पे कर रहे हैं, जगदानंद पंडित आपके इतने करीब हैं, हाँ आपके इतने प्रिय हैं कि आप बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के उनको कभी भी आप डांट सकते हो। हाँ डांटने का अधिकार बहुत कम लोगों को होता है, प्रेम करने का अधिकार सबको होता है, नहीं हर कोई व्यक्ति हर किसी को नहीं डांट सकता है ना। उन्होंने कहा कि जगदानंद पंडित आपके कितने करीब हैं, आपके कितने प्रिय हैं कि आपने बिना एक क्षण भी सोचे कि उसको कैसा लगेगा, हाँ आपने एक क्षण में उसको डांट दिया। इसी प्रकार अद्वैताचार्य भी है, अद्वैताचार्य क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से आयु में बड़े थे इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत सम्मान करते थे अद्वैताचार्य का, और अद्वैताचार्य बहुत ही परेशान रहते थे इस बात से कि मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण है, हाँ और मुझे उनका दासत्व स्वीकार करना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मुझे गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो बहुत दुखी रहते थे। तो इसका इलाज ढूंढने के लिए जो अद्वैताचार्य हैं अपने पैतृक गांव चले गए शांतिपुर, और वहां जाके उन्होंने मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा आया कि नवद्वीप में गंगा में उन्होंने छलांग लगाई और तैर के पहुंच गए शांतिपुर, और वहाँ एकदम गीले थे और दौड़ते हुए गए, दूर देखा तो अद्वैताचार्य जो हैं वो मायावाद दर्शन का प्रचार कर रहे थे, दूर से दौड़ के गए, को बालों से पकड़ के घसीट के नीचे गिरा दिया और उन पे अपने पैरों से प्रहार करने लगे। सीता देवी, सीता ठकुरानी साथ में खड़ी थी जो कि अद्वैताचार्य की पत्नी है, वो कह रही थी महाप्रभु मत मारिए मत मारिए, मर जाएंगे आप, प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। और अद्वैताचार्य क्या कर रहे थे, और बोल रहे थे अब आपने मुझे कृपा की है, अब आपने मुझे अपना दास स्वीकार किया है, अब ठीक है, हाँ पहले आप मुझे अपना गुरु मान रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब आपने मुझे मार कर अपना दास स्वीकार किया है, आपने अपनी स्थिति और मेरी स्थिति एकदम स्पष्ट कर दिया, अब सब ठीक है ना। तो हमें बहुत खुश होना चाहिए जब गुरु या कोई वरिष्ठ वैष्णव हमें डांटते हैं, इसका मतलब वो वैष्णव और गुरु आप पर अपना अधिकार समझते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग तो इसी से खुश हो जाते हैं कि देखो मेरे गुरु ने मेरे सिर पे हाथ फेरा, इसी से खुश हो जाते हैं और बाद में इस कौन छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे हजारों लोग आए जिनको श्रील प्रभुपाद और उनके अन्य सन्यासी शिष्यों ने बहुत आदर दिया और उनको बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम दिया उनको, लेकिन आज वो इस मूमेंट के साथ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को प्रभुपाद ने और प्रभुपाद के शिष्यों ने डांटा फटकारा, वो आज भी पूरे मन के साथ में जो है इस्कॉन की सेवा में लगे हुए हैं। सो इससे हमें समझना चाहिए कि गुरु और भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा इसमें भी है कि आपके सिर पे हाथ फेरा जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा कृपा है जब गुरु ये समझे कि मैं इसको डांटूँगा तो ये भाग नहीं जाएगा। गुरु तभी डांटते हैं ना, है ना। अदरवाइज वो गुरु ये सोचते रहेंगे, वैष्णव ये सोचते रहते हैं कि यार चलो गलती कर रहे हैं लेकिन सेवा तो कर रहे हैं, है ना। अगर इसको कुछ बोला तो भाग ना जाए, लगा रहना तो इसको ऐसे। सो इसका मतलब है कि अभी हमारे उस तरह से संबंध नहीं है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो इस श्लोक से हमें देखने को मिल रही है, इस प्रसंग से देखने को मिल रही है कि मैत्रेय ऋषि जो हैं वो ये नहीं कह रहे मेरे विचार से। सो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि सो हमने ये बात इसलिए की, पूर्व वंश की हम जो बात कर रहे थे कि मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को कहा कि आप बहुत यशस्वी हो और आपने पूर्व वंश जन्म लेके पूर्व वंश को और भी यशस्वी बना दिया है। सो ये सिर्फ आप जैसे ही लोग हैं जो बार बार इस तरह की जिज्ञासाएं करते हैं भगवान के बारे में, और हम लोगों को भगवान के बारे में बोलने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और उससे हमें बार बार नए रस का आस्वादन करने का अवसर मिलता है। पहले श्लोक में जो है मैत्री जी ये बात कह रहे हैं। सो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब विदुर जी ने प्रश्न पूछा तो मैत्री ऋषि ने ये नहीं कहा कि देखो मेरे विचार से ऐसा है। उन्होंने कहा देखो जो प्रश्न आप पूछ रहे हो वो प्रश्न पहले जो चार कुमारों के जो प्रमुख हैं सनत कुमार, उन्होंने संकर्षण जी से पूछा था, भगवान संकर्षण से पूछा था। तो मैत्रेय ऋषि जो है उन्होंने भगवान संकर्षण और सनत कुमार के बीच में हुए संवाद का हवाला देकर, संवाद का प्रमाण देकर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इससे दो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। एक चीज़ जो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि इससे ये प्रमाण मिल रहा है कि भागवतम जो है भगवान ने, भगवान की वाणी है, भगवान ने बोली है। और भी अनेक स्थानों पर हम देख सकते हैं कि हंसावतार के उसमें हम देखते हैं कि हंसावतार जो है वो चार कुमार और ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रही है ना। और भी हम देख सकते हैं कि भगवान प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे रही हैं। सो जो भागवतम है वास्तव में भगवान की वाणी है और इसीलिए धर्म का प्रतीक है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है वो भगवान की वाणी है। और क्योंकि भागवतम भगवद्गीता भगवान की वाणी है इसलिए ये धर्म के स्तंभ हैं। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। सो उन्होंने हवाला दिया मैत्रेय ऋषि ने कि देखिए वहाँ पर भी ये चर्चा हुई थी और वो जो चर्चा है। और भागवतम के अलावा आप गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि अनेक पुराणों में भी आप देखेंगे कि एक कोई भक्त गरुड़ जी या कोई भी भक्त जो है वो दूसरे भक्त या भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो भी जो प्राचीन काल में ऐसा ही कुछ संवाद हुआ है उसका हवाला देके उसका उत्तर देते हैं। सो इसका मतलब है कि अपनी तरफ से कोई नया विचार गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने अपने गुरु से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, गुरु परंपरा से सुना वैसा हमें यथारूप दोहराना चाहिए। हमें अपनी ओर से कुछ नया मत इसमें डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम जैसे बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, हाँ, अगर हम भगवान का जो संदेश है यथारूप बिना किसी मिश्रण के अगर हम आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो क्योंकि हमने उसमें कुछ मिलावट नहीं की, वो शुद्ध है, तो अवश्य ही वो श्रोताओं के मन को प्रभावित करेगा और उन्हें भक्ति में जोड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ भी बदलाव करने का प्रयास किया, जैसा कि कई लोग कई बार सोचते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद ने 50 वर्ष पहले कुछ जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी, वो हो सकता है आज के युग में, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो गए, तो हो सकता है आज के युग में वो इतनी उपयुक्त नहीं हो, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली कैसे उस काम को किया जा सकता है, बिल्कुल ही बोगस विचार है ऐसा। बदलाव करने का अधिकार केवल और केवल आचार्यों के पास, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं उनके पास सुरक्षित है। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों के अलावा और किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो व्यवहारिकता के नाम पर जो श्रील प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं, जो प्रणाली, जो सिस्टम श्रील प्रभुपाद ने दिए, उसमें कुछ भी बदलाव किया जाए। जो संदेश भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व दिया, लाखों वर्ष पूर्व दिया, करोड़ों वर्ष पूर्व दिया, वो संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि जो संदेश भगवान कृष्ण ने सूर्य के देवता के विश्वान को दिया था वो आज प्रासंगिक नहीं है, वो उतना ही प्रासंगिक है जितना कि लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व था। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है और ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। भगवान कृष्ण को पूरी तरह से पता है कि क्या शब्द का प्रयोग करना है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और भगवान कृष्ण जो है वो 100-200 वर्षों के लिए संदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान कृष्ण संदेश दे रहे हैं जो कि अनंत काल तक उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा। इसी प्रकार जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, ये जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ कर भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करके उन्होंने जो शिक्षाएं ग्रंथों में दी हैं, हमें उसका अपने मनगढ़ंत रूप से कुछ भी अंदाज़ा लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम कुछ भी मनोभाव मनोकल्पना इसमें लेके आएंगे, इस पूरी शिक्षाओं में अनेक विरोधाभास निकल के आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम प्रभुपाद की पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं के ऊपर श्रद्धापूर्वक टिके रहेंगे, आप देखोगे कभी भी आपको विरोधाभास नहीं दिखेगा। विरोधाभास आने शुरू होते हैं, कन्फ्यूजन तब आती है जब हम व्यवहारिकता के नाम पर शिक्षाओं में कुछ बदलाव करना शुरू करते हैं। अगर हम शिक्षाओं में बदलाव नहीं करेंगे, जिस प्रकार मैत्रेय ऋषि बिना किसी बदलाव के मैत्रेय ऋषि वही जो शिक्षा, जो ज्ञान संकर्षण ने चार कुमारों को दिया था, वही ज्ञान यथारूप जिस प्रकार मैत्रेय ऋषि दे रहे हैं बिना किसी बदलाव के, बिना किसी जमा के या घटा के, अगर हम भी वही करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो भगवान की शिक्षा का प्रभाव है, जो उसकी शक्ति है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे और अपने जीवन में बदलाव लेके आ पाएंगे और भगवान के प्रति और ज़्यादा समर्पण कर पाएंगे। लेकिन अगर हम व्यवहारिकता के नाम पर यह युक्त वैराग्य का अगर हम गलत प्रयोग करके अगर हम मिसयूज करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो श्रमेव ही केवलम, हाँ हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के संदेशों को यथारूप समझें और यथारूप दूसरों को बताएं, तभी हम गुरु परंपरा का हिस्सा बन पाएंगे। हाँ, और जो संदेश है जो हमें भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा से यथारूप प्राप्त हुआ, और वही संदेश दूसरे लोगों को भी यथारूप प्राप्त हो पाएगा। हरे कृष्ण। तो क्या रामायण और महाभारत हर चतुर्युग में होती है? नहीं, है ना। ऐसे हमें शास्त्र से पता चलता है कि भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी के जो मनु के 28वें मनवंतर में, मेरे को भी ठीक से याद नहीं है उसमें। हाँ हाँ सॉरी हाँ सो भगवान हर चतुर्युग में प्रकट नहीं होते, और महाभारत जो है भगवान कृष्ण के बिना संपन्न नहीं हो सकती। सो भगवान का इस धराधाम पे आना बहुत ही अद्भुत और विलक्षण घटना है। हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान के इस धराधाम पे प्रकट होने के केवल 5,500 साल के बाद ही हम लोग इसको समझ पा रहे हैं, हमें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चतुर्युग में भगवान प्रकट होते हैं, है ना। सो नरसिंह देव भगवान जो है वो पिछले मनमंत्र के अवतार हैं या इस मनमंत्र के अवतार हैं? इस बारे में श्रील जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब भागवतम में नरसिंह जो लीला की जो वृत्तांत है उसमें चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो नरसिंह भगवान है वो अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं विभिन्न युगों के अंदर, विभिन्न मनवंतरों में। और उन्होंने बताया कि जो भागवतम में जो वर्णन है नरसिंह भगवान का, उसमें से कुछ जो श्लोक हैं वो उनके पिछले प्राकट्य से संबंधित हैं, और कुछ जो श्लोक हैं वो उनके जो करंट जो उनका प्राकट्य है उससे संबंधित है, है ना। सो अब क्या भगवान नरसिंहदेव हर मनवंतर में प्रकट होते हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, ऐसा मैंने अभी तक मुझे नहीं मिला अभी तक ऐसा प्रसंग जहाँ पर ये कहीं भी किसी आचार्य ने टिप्पणी की हो कि नरसिंह भगवान हर मनवंतर में प्रकट होते हैं नहीं होते। हो सकते हैं होते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये पहला तो पूछो। जो प्रश्न है कि आचार्य तो सिद्धांत बदल सकते हैं, लेकिन दूसरे संप्रदाय वाला कहेगा कि देखो हमारे यहाँ तो ये वाला सिद्धांत ऐसे चल रहा है। तो पहली बात ये है कि आचार्य सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते। वो सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग में लाएं सिर्फ उसके बारे में बताते हैं। सिद्धांत एक ही है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। सब लोगों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। अब वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं? तो जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग पहले प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो लोग शास्त्रों को हाथ से लिख के कॉपी करते थे। आज व्हाट्सएप पे एक सेकंड में फटाक से भेज देते हैं, नहीं तो प्रोसेस जो किस प्रकार से वो कार्य किया जाएगा उसमें समय के अनुसार बदलाव आ सकते हैं। लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलता, ये पहली बात है ना। दूसरी बात ये है कि हर एक जो संप्रदाय है उसमें किसी विशिष्ट गुण पर, भक्ति के किसी विशिष्ट गुण पर जोर दिया गया है। जिस भक्त का जैसा स्वभाव होगा, जैसा उसको अच्छा लगेगा भगवान की सेवा में लगने का तरीका, उसी प्रकार से वो विभिन्न संप्रदायों के साथ में जुड़ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि श्री संप्रदाय में कुछ कमियां हैं या ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है वास्तव में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने उन्वत उज्ज्वल रस प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ रस, माधुर्य रस चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है, जो किसी भी आचार्य ने, किसी भी संप्रदाय ने पहले प्रदान नहीं किया। हाँ, तो इस कारण अवश्य ही हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म गौड़ीय जो संप्रदाय है वो सर्वश्रेष्ठ है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कृपा से हम भी उसका हिस्सा बन पा रहे हैं। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो हर एक संप्रदाय में कुछ विशिष्ट गुण हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जा सकती है, और उनमें से जो चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं किसी से भी जुड़ा जा सकता है और भगवान की सेवा में लगा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, ना ही कोई विरोधाभास है। काम करने का तरीका अलग अलग है ना। तो जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, उसको स्वीकार कर लो, ठीक है। सी पहले तो स्वर्ग लोक में परिस्थिति पर पुरुष गमन जो है वो मतलब दूसरे लोकों में अच्छा माना जाता है, यहाँ पे खराब माना जाता है। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जो स्वर्ग लोक है वो भी भौतिक जगत का ही हिस्सा है ना। लेकिन डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, जो अलग अलग जो लोक हैं, उनमें रूल्स अलग अलग चलते हैं, है ना। तो जिस प्रकार जो स्वर्ग लोक इत्यादि है, क्योंकि वो भोग लोक है, वहाँ पे कर्म प्रधान नहीं है, वहाँ पे कर्म नहीं कर सकते। देवी देवता जो हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं स्वर्ग के निवासी, सिर्फ भोग कर सकते हैं, वो कर्म नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए तो लालायित रहते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, क्योंकि भक्ति का जो अवसर, भगवत धाम जाने का अवसर जो पृथ्वी लोक पर उपलब्ध है, वो स्वर्ग लोक में उपलब्ध नहीं है। वहाँ इतने भोग और ऐश्वर्य हैं जो व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलता, जीव को वहाँ पर, कि वो भगवान की सेवा में लगे, है ना। वहाँ पे वो भोग कर रहे हैं, तो वो भोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं उसका कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, उसका प्रभाव हो रहा है। क्या प्रभाव हो रहा है? उनके भोग करने के कारण उनके जो पुण्य हैं वो क्षीण हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम पर स्त्री पर पुरुष गमन करते हैं तो पाप संचय करते हैं, तो वहाँ पर भी असर हो रहा है। हाँ, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक दो व्यक्ति हैं, एक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, दूसरे के अकाउंट में 0 बैलेंस है, और दोनों ने 1-1 लाख रुपया खर्चा। हाँ, तो जिसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये है उसके अकाउंट में अब 99 लाख रुपये रहेंगे, जबकि दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में अब -1 लाख रुपये, ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना। तो जो पृथ्वी लोक है, ये पाप कोई करेगा तो -1 लाख का ओवरड्राफ्ट हो गया, और लेकिन उच्च लोकों में जब भोग करेंगे तो वो 1 करोड़ से घटकर 99 लाख रह जाएंगे। और भगवान कृष्ण इसका वर्णन करते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक को विशन्ति, है ना। जब भोग करते हैं लोग तो उसके परिणाम स्वरूप उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उनको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। प्रश्न ये हो सकता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, वो सर्वोच्च माना जाता है, आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन भौतिक जगत में उसका बिल्कुल उल्टा क्यों है? तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप नदी के किनारे खड़े हो तो जो सबसे ऊंचा वृक्ष होता है वो नदी में सबसे नीचा दिखता है, जो फल बहुत ही ऊंचाई पे लगा होता है वो हमें बहुत ही गहराई में दिखता है। इसी तरह जो सर्वश्रेष्ठ रस है, हाँ, जो माधुर्य रस है, जो कि सर्वश्रेष्ठ रस है, आध्यात्मिक जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत बिल्कुल उल्टा है, हाँ, तो इसीलिए जो स्त्री और पुरुष का आपस में आकर्षण इस भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट माना जाता है ना, क्योंकि प्रतिबिंब है ना, विकृत प्रतिबिंब है, उल्टा दिख रहा है, तो जो सबसे ऊंची चीज़ है भौतिक जगत में सबसे नीची दिखाई देती है। इसीलिए हमारे शास्त्र इस बात का निषेध करते हैं कि पर स्त्रियाँ पर पुरुष गमन किया जाए, बल्कि हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त जो है पति पत्नी को भी आपस में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से संबंध नहीं बनाने चाहिए, है ना? ठीक है। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं भगवद गीता में, हाँ, धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, कि जो धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं है, धर्म अविरुद्ध जो धर्म के नियमों के अनुसार है वो काम वासना नहीं है, है ना? तो अगर संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं तो वो उसमें कुछ हानि नहीं है, लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा किया जाए तो अवश्य ही उसमें पाप सम्मिलित है, निहित है, और उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ठीक है। सो आप सबका बहुत धन्यवाद।